चलिए कक्षा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण नमो करम
नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो अज्जायाड़म नमो लोए सर्वसाम।
तीसरी डाल का आठवां छंद आपका चल रहा है। हम एक बार तीसरी डाल प्रारंभ से एक बार पाठ करते हैं, जब तक किसी को आना होगा तो और कोई आ जाएगा। पहले श्लोक से प्रश्न क्रमांक 53 नंबर पेज पे, पहले श्लोक से दसवें श्लोक तक एक बार हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके अर्थ के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे।
आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव महिना ताते शिव मगला जो चाहिए। ज्ञान चरण शिव मग सो दिविद विचारो जो सत्यारथ रूप कारण तो व्यवहार पर भिन्न आप में
पेज पर एक और पेज
रुच सम्यक भला है आप रूप को जाने पना तो सम्यक ज्ञान कला है आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए अजीव तत्व बंदर संवर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो पास्यो शरणानो तो समय व्यवहारी अभिन रूप बखानो तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीत उदयानो बहिरातम अंतर आतम पर मातम जीव त्रिधा है देह जीव को एक बही रातम तत्व मुदा है उत्तम माध्यम अंतर आत्म ज्ञानी दिव्य संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रती अनगारी जगन करे अविरत समय दृष्टि तीनों शिव मगचारी सकल ने कर पर मातम देवी तीन मेघाती निवारी श्री अरे हंस सकल पर मातम लोकालोक निहारी ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित स्वेदनांता ते हैं निहल अमल परमातम भोगे शर्म अनंता बहिरातम ताहे ज्ञान तज अंतर आतम हुजे परमातम को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे चेतनता बिन सो अजीव है पंच भेदता के है उद्गल पंच वरण रस गंध दो परस वसु जाके है जे पुद्गल को चलन सहाई धर्म ब्रह्म अनुरूपी पृष्ठत हो धर्म सहाई जिन बिन मूर्ति निरूपी सकल द्रव्य को वा आस जास में सुआकाश पिछानो नित वर्तना निज दिन सो गग हर काल परिमानो यो अजीव अब आस सुनिए मन वश काय प्रियोगा मिथ्या विरति अरुकषाय पर मद सहित उपयोगा यही आत्म को दुख कारण ताते इनको कहिए जीव प्रदेश बंदे विधि सोब धन को ना कहिए संदम से जो कर्म ना आवे तो संवर आदय सपल से विधि जरन निर्जरा ताहि सदा आचरिये सकल शर्म से रहित अवस्था सुशिव थिर सुखकारी ये विधि जो सर माता तुम की तो समकित व्यवहारी देव दिनेन्द्र गुरु परि रह दिन धर्म दया दुत सारो ये हुमान समकित को कारण अष्ट अंग युत धारो बस 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 तक में देखिए अपना विषय क्या चल रहा है अभी आठवां श्लोक चल रहा है आपका आठवां छंद आपने सात तत्व जो देखे सात तत्व के नाम आते हैं मोक्ष पक्का कोई इधर उधर तो नहीं बस तत्व सात ही क्यों होते हैं मतलब कोई लॉजिक होना चाहिए ना कि आप जैसे छह द्रव्य बताए तो द्रव्य छह बताए तत्व सात बताए तो तत्व को छह क्यों नहीं बताए तत्व को आठ क्यों नहीं बताए तत्व को सात ही क्यों बताए पहली इसके पहले छंद से लेकर अभी जो सात तत्व की बात चल रही है आपने पहले वाले छंद में आत्मा के भेद देखे होंगे बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा देखा होगा फिर परमात्मा के भेद सकल परमात्मा निकल परमात्मा सब देखा तो जब किस वो तत्व जीव तत्व में देखा फिर उसके बाद पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल देखा वो अजीव तत्व के अंदर देखा अब अगली चर्चा आएगी कौन से तत्व की आश्रव जीव की हुई अजीव की उसके बाद आश्रव की तो मेरा प्रश्न ये है कि तत्व सात ही क्यों है मैं बोलूं आठ तत्व है तो वही रीजन क्या उसका लॉजिक क्या रीजन है कि वो ऐसे जैसे अपन ने बोला ना कि नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते जैसे सूरज पूरब में से उगता है सनराइज पूरब में से होता है और पश्चिम में छुपता है तो कोई बोले कि वो पूरब में से ही क्यों उगता है उसका क्या लॉजिक है तो ऐसे तत्व सात ही क्यों होते हैं मतलब ये जो सात का जो काउंटिंग दिया क्यों वाय मतलब उसका रीजन क्या है तो उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो तत्व है ये तत्व कौन से तत्व है मोक्ष मार्ग के तत्व है ये तत्व किसके तत्व है मोक्ष मार्ग के मतलब इनको जानने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है बराबर है तो अब ये जो सात तत्व है इन सात तत्वों में हमारा मोक्ष रूपी प्रयोजन पूरा होता है इसके लिए ये तत्व सात ही हैं। अब पूरा कैसे होता है तो सबसे पहले तत्व है जीव तत्व अगर हमें मोक्ष हमारा गोल क्या है मोक्ष हमारा गोल है बराबर ना हमारा एम है कि हमें किसकी प्राप्ति करनी है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है ये हमारा गोल है बराबर है अब इसके अंदर तत्व क्या क्या है पहला जीव है फिर अजीव है बराबर है हमारा गोल है कि हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है हमें मोक्ष क्यों अर्थात उसके में भी प्रश्न है कि मोक्ष की प्राप्ति क्यों करनी है
मोक्ष की प्राप्ति क्यों करनी है
सर्वस्व के लिए मोक्ष मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा हमारे यहाँ तो सब कुछ छोड़ने की बात है और आप बोल रहे हो कि सब कुछ मिल जाएगा हमने मतलब बार बार और सब प्रवचनों में और क्लासों में सब जगह बोलते हैं ना मोक्ष जाना है मोक्ष जाना है मोक्ष जाना अरे भाई मोक्ष जाना क्यों है मोक्ष में क्या फाइव स्टार होटल है जहाँ बैठ के आराम करना है मोक्ष में क्या बीच है बीच पे घूमना है
मोक्ष में आके है क्या ऐसा जो मोक्ष जाना है मुझे? बराबर प्रश्न समझ में आया ना? कोई भी क्वेश्चन हो लॉजिकली, जैसे अभी मैं डॉक्टर, मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, तो क्यों करनी है मुझे डॉक्टर की पढ़ाई? मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे कॉमर्स क्यों पढ़ना है? मुझे सीए की पढ़ाई क्यों करनी है? क्योंकि मुझे सीए बनना है। मुझे आगे बिजनेस करना है। मुझे स्टडी क्यों करनी है? हायर स्टडी। मुझे फॉरेन स्टडी क्यों करनी है? क्योंकि मुझे अच्छा पैकेज चाहिए। बराबर, इसके लिए मुझे पढ़ाई करनी है। वो मेरे को दिमाग में नक्की है ना, गोल नक्की है। तब ऐसे हम लोग रोज बोलते हैं कि हमें मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है। लेकिन मोक्ष क्यों जाना है ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। अगर मालूम नहीं होगा तो क्या करेंगे? हमें मालूम ही नहीं है कि हमें मोक्ष क्यों जाना, और हम बस लगे पड़े हैं। जैसे होते हैं ना भेड़ चाल, बस दौड़ जा रहे हैं, दौड़ नकल की बंदर की तरह हम भी चल रहे हैं। सबने बोला, बड़ों ने बोला मोक्ष जाना है, तो हाँ भाई चलो मोक्ष जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हमें अपने देखो, जैन दर्शन इतना क्लियर दर्शन है कि उसके अंदर सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। कि सबसे पहले जैन दर्शन कहता है आपको फॉलो मत करो, आप आज्ञा प्रधानी मत बनो, आप क्या बनो, आप परीक्षा करो, आप परीक्षा करो, आप उसको फॉलो मत करो कि जो लिखा है उसको मैं फॉलो करता रहूं, फॉलो करता रहूं। ऐसा जैन दर्शन नहीं कहता। जैन दर्शन कहता है पहले आप यू हैव टू बी क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन होना चाहिए, आप उसकी परीक्षा करो, और जब अगर आपको लगता है कि हाँ ये बात सही है, उसके बाद उसको निर्णय करो, उसको अपने अनुसरण में लाओ। जैसे आप सबने बोल दिया रात्रि भोजन छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है रात्रि भोजन में, लेकिन जब तक मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि रात्रि भोजन से क्या हानि है। जैसे आप डॉक्टर भी बोलते हैं कि खाने से 4 घंटे पहले खाना खा, मतलब सोने से 4 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए, हमारी पाचन क्रिया के लिए अच्छा रहता है, या रात में जीव ज्यादा उत्पन्न होते हैं उनकी। तो जब तक मुझे पता नहीं पड़ेगा ना, तब तक मैं दूसरों के कहे अनुसार मान तो लूंगा कि दूसरे ने कहा छोड़ो, मम्मी पापा ने बोला कि रात में नहीं खाना है, रात में नहीं खाना है, गुरुओं ने कहा रात में नहीं खाना है, तो मैं छोड़ तो दूंगा। लेकिन मेरे मन में वो क्वेश्चन हमेशा बना रहेगा कि मैंने ये छोड़ा तो क्यों छोड़ा। जब तक मुझे उसका एक्चुअल रीजन नहीं मालूम पड़ेगा कि मैंने ये जो रात्रि भोजन छोड़ा है, हमारे यहाँ जो पानी छानने की विधि है, क्यों पानी क्यों छाना जाता है, कि आजकल तो इतना फिल्टर और ये सब की बात आ गई, लेकिन अपने दर्शन में तो पानी छानना कब से है, जब से है ना, तो वो सब क्यों है? क्योंकि उसका हमें रीजन मालूम होना चाहिए कि अनछने पानी के अंदर जब जीव होते हैं वो नॉर्मली हमको आंखों से देखे नहीं जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए फिर ये सब क्रिया की जाती है। जब तक हमें उनका मालूम नहीं पड़ेगा, अपने अंदर जब तक नक्की नहीं होगा ना, तब तक हम उसको मतलब कर तो लेंगे, क्योंकि मम्मी पापा ने कहा है, मम्मी पापा की बात माननी पड़ेगी, बड़ों की बात माननी पड़ेगी, या किसी दबाव में आकर कर तो लेंगे, लेकिन उसका श्रद्धा हमारे अंदर नहीं होगा। वो तो होगा ना कि बस हाँ अनुसरण कर रहे हैं, जैसे क्लास में कोई अच्छा स्कॉलर है तो बस उसके पीछे चले गए चले गए चले गए। ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें उस चीज को समझना है कि मैं ये जो कर रहा हूँ उसके पीछे बिहाइंड में रीजन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो मैं जब तक नहीं समझूंगा तब तक मैं बस कर तो रहा हूँ लेकिन उसका प्रयोजन पूरा नहीं होगा। बराबर है। तो यहाँ हम क्या, हमें क्या करना है, मोक्ष जाना है। तो मोक्ष क्यों जाना है, मोक्ष में क्या है, मोक्ष में क्या है, सुख है। और कैसा सुख है, पूर्ण सुख है, सर्व सुख, पूर्ण सुख, पूरा सुख, ऐसा सच्चा सुख, कुछ भी नाम से आप कह लो। तो मोक्ष में क्या है, मोक्ष में ये चीज है। बराबर है। अब आज दो चीज हो गई अपने पास, एक तो हो गया हमारा गोल, अब उस गोल को प्राप्त करने पे मुझे क्या मिलेगा वो भी मेरे सामने आएगा। बराबर। जैसे मुझे ये था डॉक्टर की स्टडी, बराबर है, यहाँ हुई स्टडी, यहाँ पे मैं बन गया क्या, MBBS बन गया। बराबर है। अब मैं MBBS, इस स्टडी से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, MBBS। अब इस MBBS से मुझे क्या होगा, मतलब मुझे अच्छी पैकेज होगा, मेरी सैलरी, मेरे को, मैं लग्जरियस लाइफ जी सकूंगा। जो मेरी इच्छा थी इसको करने पे, जो मेरी इच्छा थी वो इच्छा यहाँ पे मेरी पूरी हुई। बराबर है। अब इस मोक्ष को मुझे क्यों करना है, मुझे पूर्ण सुख को प्राप्त करना है। पूर्ण सुख को प्राप्त करने से क्या होगा कि मुझे जितना भी दुख है, कि वर्तमान में मुझे जितना भी दुख है, वो समस्त प्रकार के दुखों से मैं हट जाऊंगा, रहित हो जाऊंगा। और पूर्ण सुख मतलब वो सुख कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। एक बार मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई तो मैं अनंत काल तक के लिए सुखी हो जाऊंगा। बराबर है। इतना समझ में आया, समझ में आया, मैं मोक्ष को जाना है, सुख की बात है। चलो अब इसमें वापस से एक क्वेश्चन ये है कि मुझे सुख की प्राप्ति क्यों करनी है। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ कि नहीं हूँ, पहले अगर मुझे यही नक्की नहीं होगा, देखो अगर मैं यहीं पे सुखी हूँ, ये फर्स्ट स्टेज है, अगर मैं यहीं पे सुखी हूँ तो मुझे मोक्ष जाने का क्या मतलब है? अगर मुझे यहीं पे ही काफी लग्जरियस लाइफ मुझे मिल रही है, मुझे पैसा कमाना ही नहीं है, तो मैं क्यों ये स्टडी करूँ, क्यों मैं अपना टाइम बर्बाद करके एमबीबीएस करूँ, बराबर ना? मुझे अगर ये सब कुछ करना ही नहीं है, मतलब आगे जाके मुझे डॉक्टर का कुछ करना ही नहीं है, मुझे पैसा कमाना ही नहीं है, तो मैं क्यों व्यर्थ में ये सब काम करूंगा? मतलब 10-10 साल तक स्टडी करूंगा, ये करूंगा, जब मुझे डॉक्टर इसका कुछ करना ही नहीं है। ये चीज अगर मेरे पास पहले से ही यहाँ पे है, मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री है हाथ में, तो मैं आगे डॉक्टर की पढ़ाई करूंगा क्या? मेरे पास ऑलरेडी एमबीबीएस की डिग्री है तो मैं एमबीबीएस क्यों पढ़ूंगा, बराबर? मैं ऑलरेडी सीए हूँ और कोई मुझे कह के तुम सीए की पढ़ाई करो तो मैं क्यों पढ़ूंगा? मैं ऑलरेडी सीए हूँ तो मुझे सीए पढ़ने की क्या जरूरत है, बराबर है ना? तो ऐसे ही अगर मैं ऑलरेडी सुखी हूँ, मैं पहले ही अगर सुखी हूँ तो मुझे सुख की क्या जरूरत है? सुख की जरूरत कब पड़ेगी? जब मैं दुखी होऊंगा, बराबर? सुख की जरूरत कब पड़ेगी? जब मैं दुखी होऊंगा। तो सबसे पहले ये नक्की करना पड़ेगा कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ? दुखी हूँ। सबसे पहले नक्की करना पड़ेगा ना, मैं कैसा हूँ? दुखी हूँ। कहाँ पर दुखी हूँ? अभी वर्तमान में दुखी हूँ, इस साल में वर्तमान में मैं क्या हूँ? दुखी हूँ। कैसा दुख है मुझे? अब जैसे अपना है, अपने को कैसा दुख है? और अपन को क्या लगता है कि मैं तो सुखी हूँ, घर पे सब लोग हमारी बात मानते हैं, घर जाओ आराम से एसी चलाओ, बैठ जाओ टीवी देखो, खाओ पियो मस्त मौज मजे करो, बराबर है? तो मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ?
उसके बाद क्या
वो चीज में क्या, उसी में अपन और देखे ना, जैसे अब मेरे एग्जाम में कम नंबर आए तो घर वालों ने डांटा तो मैं दुखी हो गया, बराबर है? मेरे मन चाहा खाना नहीं बना आज तो मैं दुखी हो गया, मेरी मन चाहिए कोई वस्तु मुझे ये चाहिए थी वो मॉडल नहीं, मुझे iPhone 6 चाहिए था और मुझे घर वाले ने 5 ला के दे दिया तो मैं दुखी हो गया, बराबर है ना? कि मुझे कुछ और करना था लेकिन घर वाले किसी ने मेरे को ये करने नहीं दिया तो मैं और दुखी हो गया। तो घर मतलब हर स्टेप बाय स्टेप में आप अगर क्लियर करोगे तो आपको डेली एक्टिविटीज में भी इतने दुख मिलेंगे कि मतलब इससे ये पक्का होता है कि मैं सुखी तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? अभी दुखी हूँ। तो इस दुख को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुख की प्राप्ति करनी पड़ेगी, बराबर है? दुख के अपोजिट क्या है? सुख है। तो अगर मुझे दुख से बचना है तो मुझे सुख की प्राप्ति करनी है, और अगर सुख की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए मुझे किसको प्राप्त करना पड़ेगा? मोक्ष को प्राप्त करना पड़ेगा। ये जो मेरा गोल है उस गोल को जब मैं प्राप्त करूंगा, बराबर ना, कि मुझे एमबीबीएस बनना है तो मुझे डॉक्टर की स्टडी करनी पड़ेगी, इसका क्लियर है? ऐसे ही मुझे सुख की प्राप्ति करनी है तो मुझे मोक्ष को जानना पड़ेगा, मोक्ष को अपना अनुसरण करना पड़ेगा। तब उस मोक्ष को मुझे प्राप्त करना है, सबसे पहले गोल नक्की किया हमने, क्या गोल नक्की किया? कि हमें इस चीज को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, क्योंकि इस मोक्ष में क्या है? इस मोक्ष में पूर्ण सुख है और मैं दुखी हूँ, अतः मुझे सुख को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। उसकी चीज क्लियर, समझ में आया? बराबर है ना? कोई कॉन्सेप्ट बराबर है सर? अब मुझे अब आगे कि अब ये मुझे मोक्ष प्राप्त करना है तो किसको प्राप्त करना है? मुझे किसको प्राप्त करना है? मुझे मतलब अपने अपने, ठीक है? तो अब मैं कौन हूँ?
जीव
हूँ, तो बराबर है? अब मुझे मोक्ष प्राप्त करना है तो मुझे जीव को जानना पड़ेगा, बिना जीव को जाने में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, बराबर है? अब जीव किससे भिन्न है? अजीव से भिन्न, बराबर है? मैं जीव हूँ तो मुझसे भिन्न सब क्या है? अजीव है, तो मुझे अजीव को भी जानना पड़ेगा, बराबर? तो मुझे क्योंकि मुझे जी, अपने इस जीव को इस अजीव से अलग करना है ना, तो मुझे इस अजीव को भी जानना पड़ेगा। तो अगर मुझे मोक्ष प्राप्त करना है तो जीव को भी और अजीव को भी जानना पड़ेगा, बराबर है? अब अजीव के अंदर क्या क्या आता है? पर्याय में आश्रम, बंद, संवर, और मोक्ष, बराबर है? ये तो हो गए, इन दो को जानना जरूरी हो गया, बराबर है? अब मुझे प्राप्त क्या करना है? मोक्ष, तो मोक्ष को जानना ही है। ये तीन हो गए। मोक्ष कैसे होता है? जब संवर और निद्रा होती है, मतलब कर्मों का आना रुकता है और कर्म फिरते हैं, तब मोक्ष होता है, बराबर है? तब मोक्ष जानना है तो ये भी जानना पड़ेगा, बराबर है? और संवर कब होता है? जब आश्रम रुकता है,
और सर्जरा कब होती है
मतलब सर्जरी कब
बराबर है, इन लोगों को भी जानना पड़ेगा तो इन सात तत्व के अंदर मेरा जो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है वो प्रयोजन इन सात तत्वों के अंदर पूरा होता है, इसके लिए तत्व सात ही होते हैं। समझ आया प्रश्न क्या था कि तत्व सात ही क्यों होते हैं, यहाँ पर मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है, अतः अगर मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है इसके लिए मोक्ष को जानना ही है, मैं जीव तत्व हूँ मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है इसके लिए मुझे जीव को जानना है, जीव से भिन्न अजीव है उससे मुझे अपने को भेद ज्ञान करना है इसके लिए मुझे अजीव को जानना है, जीव मोक्ष का उपाय है संवर और निद्रा है, जब संवर और निद्रा होता है तब मोक्ष होता है तो मुझे संवर निद्रा को जानना है, संवर और निद्रा आश्रम बंध के द्वारा आश्रम के जब कर्मों का आना रुकता है तो संवर और बंध का फिरना होता है तब निर्द्रा, तो मुझे आश्रम और बंध को जानना भी जरूरी है, इसके लिए ये सात तत्वों से हमारा मोक्ष मार्ग प्रयोजन पूरा होता है, इसके लिए तत्व कितने होते हैं सात होते हैं, अभी ध्यान में रहेगा हमेशा तत्व कितने होते हैं सात तत्व होते हैं बराबर है, इनको प्रयोजन भूत तत्व भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इनसे हमारा मोक्ष का जो प्रयोजन है वो पूरा होता है, बराबर है, मुझे समझ में आई। तो अभी हम किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ये जो सात तत्व है इन सात तत्वों के ऊपर हम अपनी चर्चा कर रहे हैं, तो जिसके अंदर आपने क्या देखा है, सबसे पहले जीव को स्वरूप देखा बराबर है, उसके अंदर फिर भेद किए, क्या क्या भेद किए, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा बराबर है, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, परमात्मा कौन है सिद्ध अरहंत और सिद्ध भगवंत, जब उसके अंदर दो भेद करते हैं सकल और निकल, शरीर सहित है वो अरहंत परमात्मा और शरीर से रहित है वो सिद्ध परमात्मा बराबर है, बहिरात्मा और एक अंतरात्मा, अंतरात्मा के तीन भेद किए, जगन्य मध्यम और उत्तम, जगन्य मध्यम उत्तम ये तीन भेद किए बराबर। तो एक सामान्य सा प्रश्न ये है कि एक उदाहरण से मैं और क्लियर आपको कर देता हूँ, अपन जैसे स्टेशन पे या कहीं से आते हैं ना, तो अपने को जैसे स्टेशन के साइड में जो रोड मार्केट लगता है ना, तो उसमें जैसे अपन ने कभी देखा होगा जैसे तो घड़ी वालों की दुकान होती है बराबर, तो घड़ी वाला अपनी दुकान के यहाँ टेबल लगा के बैठा है और उस पर घड़ी रखे हुए है बराबर है, अब उसने वहीं बाजू में एक टब सा रखा है उसमें पानी भरा है और उस टब के अंदर भी घड़ियाँ पड़ी हैं बराबर है, समझे सिचुएशन क्या है, आप रोड से जा रहे हैं, रोड के बाजू में एक दुकान वाला बैठा है और वो घड़ी की दुकान लगा के बैठा है, टेबल पे कुछ घड़ी रखी है और कुछ घड़ी पानी के टब में पड़ी हुई है, अब कोई व्यक्ति अगर ये बोले कि कितना मूर्ख आदमी है कि मेरा धंधा करने बैठा है कि नुकसान करने बैठा है, क्यों कि घड़ी को पानी में डाल रखा है घड़ी खराब हो जाएगी, तो वो मूर्ख है कि वो ज्ञानी है, कौन दुकान वाला नहीं वो आदमी की बात हो रहा है, वो जो ऐसा बोल रहा है ना कि ये कितना पागल है कि ये धंधा करने बैठा है कि कमाने बैठा है, तो वो पागल है कि वो ज्ञानी है,
तो पता नहीं है कि घड़ी पानी में भी चल सकती है,
वो जो दुकान वाला है वो दुकान वाला क्या बता रहा है, उस घड़ी को पानी में डाल के क्या बताना चाह रहा है, ये घड़ी कैसी है वाटर प्रूफ घड़ी है, ये घड़ी कैसी है वाटर प्रूफ घड़ी है कि इसके अंदर ये पानी में डालो तो भी इसके अंदर पानी कभी लगता नहीं है, पानी इसके अंदर घुसता नहीं है, तो उसी प्रकार टेबल पे जो घड़ी पड़ी है वो तो उसको पानी ने नहीं छुआ ये तो मालूम है हमको बराबर है, लेकिन वो जो घड़ी पानी में पड़ी हुई है उसके बाद भी उसको पानी छूता नहीं है क्योंकि वाटर प्रूफ है ना, घड़ी पानी में पड़ी है तो भी वो पानी से कैसी है अलग है, उसी प्रकार टेबल पे पड़ी घड़ी है वो तो क्या हो गया परमात्मा, वो तो क्योंकि सर्व कर्मों से रहित है, यहाँ पे पानी मतलब कर्म बराबर, पानी मतलब कर्म और घड़ी मतलब ये जीव, उदाहरण रूप में समझना पानी मतलब कर्म और घड़ी मतलब जीव, तो जो टेबल पर पड़ी हुई घड़ी है वो तो हो गए सिद्ध मतलब वो तो हो गए भगवान, उनके तो कर्म लगते ही नहीं, लेकिन जो पानी में पड़ी हुई घड़ी है उसको जो ऐसा जानता है कि ये घड़ी वाटर प्रूफ है मतलब इस घड़ी को कभी पानी में नहीं छुआ वो होता है अंतरात्मा, और जो ऐसा जानता है कि ये घड़ी
और ये पानी मिल रहे हैं इस घड़ी में, पानी घुस गई है, वो हो है बहिरात्मा। देखा, जिसने शरीर और आत्मा को एक में के जाना वो बहिरात्मा, तो जिसने पानी और उस घड़ी को कैसा जाना है, एक मतलब वो घड़ी में पानी घुस गया या पानी में घड़ी घुस गई, ऐसा जो जानता है वो है बहिरात्मा। जिसने इन दोनों को अलग अलग जाना है वो अंतरात्मा। जब अलग अलग हो जाएगा तब परमात्मा, तब परमात्मा। अभी अलग अलग हुआ नहीं है, लेकिन उसी अवस्था में अलग अलग जाना, मतलब वो घड़ी पानी में पड़ी हुई है, उस पानी में पड़ी हुई होने के बाद भी उसको पानी से भिन्न जाना, वो हुआ अंतरात्मा। और जब पूरे पानी से बाहर जब वो जो घड़ी है, जो टेबल पे घड़ी है, कर्म सर्व कर्मों से रहित, तब हुआ परमात्मा। समझ में आया? बराबर है। आत्मा कितने भेद किए? प्रकार से तीन प्रकार बताए। पहला है बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। समझ में आया? आत्मा वही है, घड़ी वही है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन उसकी अवस्थाओं के द्वारा उसका विश्लेषण यहाँ पर किया है। बराबर है। अब उसके बाद में आपने क्या देखा? पुद्गल का देखा कि उसके बाद में उसके बाद जीव हुआ, जीव के बाद आपने अजीव देखा। अजीव के अंदर आपने पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ऐसे जो द्रव्य हैं उन द्रव्यों की चर्चा की। अब उसके बाद अपनी चर्चा आती है कौन से द्रव्य? सत्य के ऊपर, आश्रव तत्व के ऊपर। बराबर है। सात तत्व की बात आप सबने बहुत बार सुनी भी होगी, सात तत्व का उदाहरण भी आप सबने सुना होगा। क्या उदाहरण आता है सात तत्व का? नाम वाला उदाहरण आता है ना, कि जीव है, अजीव है, आश्रव है, बंध है। नाम वाला उदाहरण नहीं सुना है क्या? क्या उदाहरण आता है कि जैसे ये समुद्र है, समुद्र है या क्या है, नदी है। बराबर है। ये नदी है। अब इस नदी में एक नाव चल रही है, ड्रॉइंग पे मत जाना। ये नदी है और इस नदी में क्या चल रही है? नाव चल रही है। बराबर है। ये है जी, ये नाव क्या है? अजीव। इस नाव में कुर्सी से टक्कर से कुछ छेद हो गया,
पानी
नहीं, पानी था नहीं, नाव में पानी थोड़ी ना आता। अब छेद हुआ तो फिर पानी धीरे धीरे अंदर आना चालू हुआ, ये क्या हुआ? आश्रम, कर्मों का आना। अब इसमें नाव में पानी का आना, जब ये छेद हुआ तो छेद होने के कारण पानी क्या हुआ? अंदर आया, तो क्या हुआ? आश्रम। अब पानी अंदर आएगा तो कहाँ जाएगा? उधर ही जाएगा ना। अब ये नाव के अंदर ये ऐसे 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 बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, धीरे 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 इतना हो गया, तो ये क्या हुआ? बंद। बंद में ये ध्यान रखना है, आश्रम भी चालू है, मतलब कर्मों का आना चालू है कंटिन्यूसली, और वो उसमें बंधता भी जा रहा है, मतलब उसके अंदर स्टोर होता भी जा रहा है, बंद हो। बराबर है। अब इस जीव को ख्याल आया, उस नाव को ख्याल आया कि मेरी नाव में क्या हुआ? छेद हो गया है, उससे पानी, मेरे नाव में पानी भर गया। बराबर। जब पानी ने इसको टच किया तो इसने देखा कि पानी कहाँ से आया, तब इसने उस छेद को ढूंढा। बराबर है। अब उसने उस छेद को ढूंढ के क्या किया, इस छेद पे कुछ लगा के फेविक्विक से उस छेद को बंद कर दिया। बराबर है। अब छेद बंद हुआ तो क्या हुआ? संवर, कर्मों का आना रुकना। अब यहाँ पे पानी आना रुक गया ना, छेद बंद हो गया तो पानी आना रुक गया, तो क्या हो गया? संवर। संवर किसके अभाव पूर्वक हुआ? आश्रम के अभाव। आश्रम मतलब क्या था? कर्म का आना। तो अब कर्म आने से क्या हुए? रुक गए, तो आश्रम बंद हो गया और क्या हो गया? संवर हो गया। अब क्या करना पड़ेगा? जैसे जैसे पानी भरा वैसे वैसे नाव नीचे आती है ना, क्योंकि जितना भरता जाएगा उतना वो नीचे आता जाएगा। तो अब इसको क्या, अभी गेट तो बंद कर दिया लेकिन पानी तो अभी उसमें भरा पड़ा है, अब उसमें से पानी निकालना। अब उसने कैसे भी मटके से, कैसे भी उसके पास जो भी साधन थे, उसने इसको पानी को निकालना चालू किया और धीरे धीरे पानी निकाला। तो वो क्या हुई
निद्रा,
वो क्या हुई निद्रा। निद्रा किसके अभाव पूर्वक हुई? ये जो बंधे हुए कर्म थे उन कर्मों को क्या किया, धीरे 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 उन बंधे हुए कर्मों को हटाया निकाला तो क्या हुई निद्रा। और जब ये निद्रा पूर्ण हुई और ये नाव इस पानी से मतलब अंदर डूबी थी ना पानी भरने से, तो नाव क्या हुई ऊपर बाहर आ गई, तो वो क्या हुआ मोक्ष हुआ। किसका मोक्ष हुआ? कई बार क्या होता है हम क्या बोलते हैं किसका मोक्ष हुआ, नाव का मोक्ष हुआ। नाव तो क्या है अजीब है, ऊपर कौन आया कि इस नाव के अंदर जो बैठा ये नाविक है, ये जो जीव तत्व है उस जीव तत्व का मोक्ष हुआ। बराबर है, समझ में आया? अब ऐसे ये जीव है, जीव और ये जीव इस शरीर अजीव के साथ में है, बराबर है। अब इसके प्रति समय कर्म आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कर्मों का आश्रय हो रहा है। और कर्म कहाँ जा रहे हैं, मेरे साथ बंद हुए जा रहे हैं, बराबर, बंद हो रहा है, उदय हो रहा है, ऐसे बंद रहे तो आश्रय बंद मेरे साथ कंटिन्यूसली चल रहा है। मैं जब इसको समझ के आश्रम के रास्ते को रोकूंगा तब मेरे संवर होगा, और मैं जब अपने बंधे हुए कर्मों को अपने तप के द्वारा अपने ज्ञान के द्वारा फिराऊंगा तब मेरे निर्जरा होगी, और जब मेरे पूर्ण कर्म से मैं रहित हो जाऊंगा तब मेरे क्या होगा मोक्ष होगा और मैं भगवान बन जाऊंगा। बराबर, इस प्रकार ये साक्षात तो इसमें सबसे ऊपर कौन आएगा, ये जब कर्म की अवस्था समाप्त हो जाएगी तो ये जीव का मोक्ष होगा, नाम का मोक्ष नहीं होगा, किसका मोक्ष होगा बराबर। तो इन सात तत्व में अभी हमारी चर्चा कौन से तत्व के ऊपर चल रही है, आश्रय तत्व के ऊपर। चलिए एक बार आठवां छंद पढ़ते हैं फिर उसका विस्तार करेंगे। सकलेन्द्र को वास में सो आकाश की छानो नियत वर्त निशिन सो हरे काल परिमानो युवा जीव अब अरव सुनिए मन वच कायत योगा मिथ्या विरति अरुकषाय पर माद सहित उपयोगा। देखिए इसके नीचे अन्वय अर्थ में, इसके ऊपर की दो पंक्ति तो आपने पिछली क्लास में पढ़ी ली है, फिर भी अपन एक बार पूरा अन्वय अर्थ पढ़ते हैं। जिसमें समस्त द्रव्यों का निवास है वह आकाश द्रव्य जानना, स्वयं प्रवर्तित हो और दूसरों को प्रवर्तित होने में निमित्त हो वह निश्चय काल द्रव्य है, तथा रात्रि दिवस आदि व्यवहार काल जानो, इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन हुआ। तो इस प्रकार जीव और अजीव ये दो तत्व का वर्णन यहाँ पे समाप्त होता है। अब आश्रव तत्व सुनो, अब आश्रव तत्व की बात यहाँ प्रारंभ करते हैं। मन वचन और काया के आलंबन से आत्मा के प्रदेश चंचल होने रूप तीन प्रकार के योग तथा मिथ्यात्व अविरति कषाय और प्रमाद सहित उपयोग आत्मा की प्रवृत्ति वह आश्रव तत्व कहलाता है। कि सबसे पहले आश्रव की परिभाषा तो अभी हमने देखी, कर्मों का आना वह आश्रव है। अब आश्रव के विस्तार में जाते हैं कि आश्रव किन किन कारणों से होता है, तो उसके विस्तार में ये लिखा है कि यह आश्रव मन वचन और काया के अवलंबन से आत्मा के प्रदेश चंचल होने रूप तीन प्रकार के योग तथा मिथ्यात्व अवृत्ति कषाय और प्रमाद सहित उपयोग आत्मा की प्रवृत्ति वह आश्रव तत्व कहलाता है। देखिए इसमें पीछे पेज 66 नंबर पेज पर आठवां छंद के भावार्थ में नहीं मिला, आठवां छंद देखिए, आठवां छंद, हाँ इसका ये वाला, इसका भावार्थ में, भावार्थ के नीचे एक फुटनोट दिया है उसको एक बार पढ़ता हूँ मैं। ऊपर की दो लाइनों के लिए दिया है, जिस प्रकार किसी बर्तन में पानी भरकर उसमें राख डाली जाए, राख समझते हैं ना कोयले का वो होता है, राख डाली जाए तो वह उसमें समा जाती है, फिर उसमें शक्कर डाली जाए तो वह भी समाई जाती है, फिर उसमें सुइयां डाली जाए तो वह भी समा जाती है, उसी प्रकार आकाश में भी मुख्य अवगाहन शक्ति है, इसलिए उसमें सर्व द्रव्य एक साथ रह सकते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को रोकता
नहीं है, जैसे मतलब ऐसी बात आती है ना कि आकाश में सभी द्रव्य रहते हैं, तब कोई बोलेगा कि सभी द्रव्य एक साथ कैसे रह सकते हैं, कहो ना एक, जैसे बोलते ना एक घर में इतने लोग रहते हैं तो क्या लड़ाई नहीं होती क्या, एक रूम में दो लोग दो भाई एक साथ रहते हैं तो उन दोनों में लड़ाई होती है ना, तो उसी प्रकार छह द्रव्य एक ही आकाश में रहते हैं तो इनमें आपस में लड़ाई नहीं होती क्या, कैसे रहते होंगे, सब अपने अपना स्पेस लेते हैं ना, जैसे अब ये मेरे लाइन है इसके क्रॉस मत करना, ये मेरी लाइन है तो इसको क्रॉस मत करना, जैसे छह द्रव्यों की कैसे रहते होंगे, तो उसको समझाने के लिए इसमें बताया है, जैसे अपन किसी बर्तन के अंदर पानी भर देना, और अगर आसान तरीके से देखा जाए, अपन ने बर्तन में पानी भरा, बराबर है, एक टोब में मैंने पानी भरा, अब उसमें पानी भर के मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा नमक डालता हूँ, नमक डालता हूँ, बराबर है, नमक डालने के बाद मैं उसमें क्या डालता हूँ, शक्कर डालता हूँ, शक्कर डाला, राख डाला, तो वो सब कहाँ जाता है, वो जिस प्रकार उस पानी के अंदर सब समा जाता है, उसी प्रकार ये आकाश में एक ऐसी शक्ति है, अवगाहन शक्ति, कि उसमें सभी द्रव्य समाये हुए हैं, कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को परेशान नहीं करता, कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्थान नहीं घेरता, सब एक साथ रहकर भी बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। अब एक साथ रहकर भी अलग अलग मतलब क्या, कि जैसे अब वो पानी है या कोई, जैसे अपन ने सब्जी बनाई, बराबर है, सब्जी के अंदर मैंने नमक भी डाला, मैंने चीनी भी डाली, मैंने मसाला भी डाला, तो अब वो सब मसाले उसमें मिल गए, बराबर है, मिल गए, अब प्रश्न है कि वो मिल गए कि अलग अलग हैं, क्यों मिल तो गए, सब अच्छा, मैं जब सब्जी खाता हूँ तो मैं अलग अलग स्वाद लेता हूँ कि मैं अब नमक का स्वाद लूंगा, अब मैं मिर्ची का लूंगा, अब मैं चीनी का लूंगा, अब मैं किसका लूंगा, तो स्वाद अलग अलग आ रहा है कि एक ही आ रहा है, एक आ रहा है, तो भी प्रश्न है कि वो मिले हैं कि अलग अलग है, मिले हैं कि अलग अलग है, मिलकर भी अलग अलग है, क्यों, देखो जैसे अब मान लो कि मुझे स्वाद एक ही आ रहा है, बराबर, लेकिन अगर सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया तो मुझे कितनी जल्दी ख्याल में आता है कि नमक ज्यादा है सब्जी में आज, अगर वो मिल जाते तो मुझे ख्याल में कैसे आता, मुझे तो फिर ऐसा लगना चाहिए ना कि सब कुछ ज्यादा है, लेकिन मुझे मालूम पड़ गया कि नमक ज्यादा है, तो उसका मतलब वो मिले, अगर नहीं मिलता तो भी वो सब्जी नहीं बनती, तो वो मिला तो है लेकिन मिलकर भी कैसा है, अलग अलग है, कि जो चीज मुझे मिलने के बाद भी मुझे हर चीज का अलग अलग ख्याल है, जैसे नमक ज्यादा हो गया तो मुझे मालूम होती है कि सब्जी खारी हो गई, बराबर है ना, तो ऐसे ही वो मिले तो है लेकिन फिर भी कैसे रहते हैं, भिन्न भिन्न रहते हैं, उसी प्रकार इस आकाश के अंदर ये छह द्रव्य एक में एक होकर रहते हैं, मिलकर रहते हैं, लेकिन फिर भी सब कैसे हैं, अलग अलग है, बराबर है, तो ये आकाश की शक्ति को बताने के लिए उदाहरण दिया है कि आकाश में एक ऐसी शक्ति है कि उसमें सभी द्रव्य एक साथ रह सकते हैं, जैसे उस पानी के अंदर या उस सब्जी के अंदर अपन इतने सारे मसाले डालते हैं ना, वो सब एक में एक हो जाते हैं तो भी अलग अलग है, उसी प्रकार ये सब भी सभी द्रव्य उस आकाश में एक में एक होकर अलग अलग रूप से रहते हैं। देखिए उसी में एक अगला और दिया है, ये तो आकाश द्रव्य का हुआ, फिर नीचे जो दिया वो काल द्रव्य का फुटनोट है, अपनी अपनी पर्याय रूप से स्वयं परिणमित होते हुए जीवाधिक द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त है उसे काल द्रव्य कहते हैं। जिस प्रकार कुमार के चाक को घूमने में धुरी यथार्थ के लिए काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं, लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतने ही काल द्रव्य है, दिन घड़ी घंटा मास उसे व्यवहार काल भी कहते हैं। ये उदाहरण रूप में दिया है कि काल द्रव्य के दो भेद है, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। निश्चय काल मतलब काल द्रव्य और व्यवहार काल मतलब जो हम बोलते हैं ना ये घड़ी घंटा समय, ये सब व्यवहार काल में आते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ तक अजीव सत्य की चर्चा हुई। किसी को हर कोई शंका भी हो, कोई प्रश्न भी हो, कैसा भी टाइप का, तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि क्लास है ना, क्लास में तो आप कुछ भी पूछ सकते हो, प्रवचन हो तो एक बार सोचना पड़ता है, क्लास में नहीं सोच सकते, क्लास में तो आपको जो और प्रश्न होना ही चाहिए, जैसे अभी मैंने ये सब बातें बताई तो आपको माइंड में क्लियर तो होना चाहिए ना कि मैं ये सब पढ़ रहा हूँ, कि मुझे मैं पाठशाला आ रहा हूँ, मतलब हर संडे मैं पाठशाला आता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, तो मैं क्यों जाता हूँ, मैं वो सब काम क्यों कर रहा हूँ, किसी के दबाव में तो नहीं कर रहा, मुझे कई घर वालों ने मुझे मार पीट के भगा दिया घर से कि नहीं तू मंदिर नहीं जाएगा तो तुझे खाना नहीं देंगे, तू पाठशाला नहीं जाएगा तो हम तुझे ये नहीं देंगे, तो
ऐसे दबाव में तो नहीं कर रहा, मतलब मुझे समझ में आना चाहिए कि ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ वो किसी और के लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए कर रहा हूँ। तो जब तक अपने स्वयं के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ तब तक मुझे वो उतनी रुचि नहीं जगेगी, बरा ना। अगर मान लो कि मेरे सब फ्रेंड्स लोग जाते हैं या मेरे मम्मी पापा ने कहा कि पाठशाला जाना है, तो उस चक्कर में मैं आ तो गया पाठशाला, लेकिन जब तक मुझे अपने मेरे भले के लिए नहीं लगेगा ना, तब कैसा होगा कि मान लो जैसे आज जल्दी क्लास लग गई, एक घंटा जल्दी लग गई, तो अब मुझे ऐसा लगेगा कि अरे अब नींद आ रही है तो मैं पहले सो जाता हूँ, क्लास हो गया अगले संडे चले जाएंगे, बराबर ना। तो वहाँ पे क्या होगा कि जब तक अगर मुझे ऐसा लगेगा नहीं मेरे लिए क्लास है, मुझे मेरा भला करना है, मुझे वहाँ पे जाके कुछ सीखने को मिलता है, मुझे वहाँ जाके अच्छी बात जानने को मिलती है, जब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा तब तक मेरी रुचि अंदर से नहीं जगेगी। मतलब आपको बाहर के लोग आपको बोलेंगे तो सही, लेकिन आपके अंदर से आपको रुचि पहले लगनी पड़ेगी। जब अंदर से रुचि लगेगी तो फिर बाहर में किसी को बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि जब आपको मालूम पड़ गया ना कि किसी को मालूम है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे ये रात रात भर जग के पढ़ना है, मुझे अगर टॉप करना है कॉलेज में टॉप करना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे मेरिट में लाना है, या ऐसा है ना कि मुझे मैंने टेंथ दिया, मैंने बोर्ड दिया, अब मुझे इलेवेंथ में मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, बराबर है। अब इस कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट जाती है 90-91, तो मुझे 90-91 लाना है उसके कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो मुझे क्या करना है, मुझे कंटिन्यूसली रात रात भर पढ़ाई करनी है, मुझे इतना स्टडी करनी है, ये सब मुझे ख्याल में आता है। तो वो किसके लिए, कि मुझे, क्योंकि मुझे उसमें एडमिशन लेना ना, तो मुझे उसकी रुचि जगी है। तो उसी प्रकार जब मुझे अपने स्वरूप को जानने की रुचि लगेगी कि वास्तव में जो बात है वो मेरी खुद की बात है, तो जब इस जीव को ऐसी रुचि लगेगी तब इसका फिर किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अपने आप ही हम अपने आप ही इस सब कार्य में प्रवृत्त होंगे, बराबर है। देखिए अब भावार्थ में देखिए, भावार्थ में आश्रय तत्व जिसमें छह द्रव्यों का निवास है उस स्थान को आकाश कहते हैं, जिसकी चर्चा अभी अपन ने नीचे की, जो अपने आप बदलता है तथा अपने आप बदलते हुए अन्य द्रव्यों को बदलने में निमित्त है, उसे निश्चय काल कहते हैं, रात दिन घड़ी घंटा आदि को व्यवहार काल कहा जाता है। इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन हुआ, तो इस प्रकार ये अजीव तत्व का वर्णन यहाँ पे हुआ। अब आश्रय तत्व का वर्णन करते हैं, उसके मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग ऐसे पांच भेद हैं, कि इसके ये पांच भेद आश्रय के बताए, मतलब भेद मतलब उसके कारण, आश्रय के भेद मतलब आश्रय किन किन कारणों से, आश्रय मतलब कर्म का आना, तो कर्म किन किन कारणों से इस जीव के साथ आते हैं बनते हैं, उनको इन पांच भेदों में विभाजित किया है। उन पांच भेदों के नाम दिए हैं मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग, ऐसे इसके पांच भेद हैं। ये इसके अंदर श्लोक के अंदर इसके जो लिखा है ना, यूं अजीव अब आश्रव सुनिए मन वच काय त्रियोगा मिथ्या अविरति अरु कषाय प्रमाद सहित उपयोगा। तो यहाँ पे सबसे पहला भेद योग को लिया है, योग मतलब मन का, मन योग, वचन योग और काया योग, ये तीन जो योग है वो छंद में सबसे पहले लिया है, लेकिन वास्तव में ये सबसे अंत में आता है, पीछे भेद में सबसे अंत में लिया है कि मिथ्यात्व पहला है, दूसरी अविरति है, तीसरा प्रमाद है, चौथा कषाय है और पांचवा है योग। इसमें योग में मन योग, वचन योग, काय योग, काय योग तो सब समझते हैं, काय योग मतलब ये शरीर, काय योग मतलब शरीर, वचन योग मतलब हम जो बोल रहे हैं वो, और मन योग मतलब मेरे अंदर मन में जो चीज चल रही है वो मन योग। तो ऐसे इन तीन योगों के जो परिस्पंदन है, जो हलन चलन है, उनके द्वारा कर्मों का प्रति समय आना कहाँ पर हो रहा है, कर्म कहाँ पर आ रहे हैं, किसमें आ रहे हैं कर्म, हमारे में, हाँ तो बोलो जोर से, कर्म किसमें आ रहे हैं, हमारे में। ये चीज तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ना कि मैं ये जब कर्म है तो कर्म कहाँ आ रहे हैं, हमारे अंदर आ रहे हैं, कर्म कहाँ बन रहे हैं, हमारे अंदर बन रहे, बराबर ना। तो कर्म आदि ये जो प्रति समय हमारे साथ बन रहे हैं, कर्मों का जो आश्रय हो रहा है, उस आश्रय के मुख्य पांच कारण बताए हैं, मिथ्यात्व है, पहला है मिथ्यात्व, दूसरा है अविरति, तीसरा है प्रमाद, चौथा है कषाय और पांचवा है योग। ऐसे पांच
भेद हैं, अब इन पांच भेदों की चर्चा हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी पूछना हो, जैसे इस धाल के अंदर मोक्ष मार्ग का वर्णन होगा, तो इन पहले एक से दस छंदों के अंदर सात तत्वों की चर्चा की है, तो सात तत्वों के स्वरूप में, मोक्ष मार्ग के स्वरूप में, या किसी में भी आपको कोई शंका हो तो आप उस हिसाब से पूछ सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति बोलेंगे।
जावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सोवाणी मसकनु सदा देत मूलो।
गुरु राजन जिनवाणी माता।